हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी। गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल। गिरधारी गोपाल जगन्नाथ जय जगन्नाथ बल देवा जय सुभद्रा मैया। जगन्नाथ नित्य गौर हरिबो 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गौर प्रेमानंद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद उसका दसवां अध्याय और श्लोक 20 21 और 22 तीन श्लोक लेना है लेकिन 22वां शायद बोर्ड पे लिखा है। वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वृते स्वलोकताम् स्वरलोकताम् भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वृतेश्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत लब्ध भक्ति भविष्यत वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वृते सर्वलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते वृते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यत। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते वृते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यत। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते वृते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यत। माताजी, वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते वृते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यत। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते वृते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यत। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यस्तरच्छते स्वलोकतां भूयो वासुदेवस्य। भगवान का सानिध्यम संगति या साक्षात्कार लब्ध्वा प्राप्त कर दिव्य सरस्वते। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद स्वलोकताम स्वर्गलोक में रहने की इच्छा भूयः पुनः लब्ध भक्ति अपनी भक्ति को पुनः प्राप्त करके भविष्यत हो जाएंगे। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रीला प्रभुपाद महाराज की ये 22वां श्लोक है, लेकिन अनुवाद में 20, 21 और 22 तीनों श्लोकों का पढ़ रहा हूं। ये दोनों युवक नलकुवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र है, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो जो आज का श्लोक लिया है वो है, यही नहीं मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नलकुंवर तथा मणिग्रीव की चेतना बनी रहे जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को न भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सकें और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सकें। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी हैं, किंतु वे सब भक्त हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आसुरम भावम आश्रित, किंतु देवता नहीं भूलते। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है, ये पद्म पुराण में भी बताया गया है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है, अन्य अभिलाषिता शून्य। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्मलोक ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है और योग मिश्र भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसीलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है और 5 प्रकार की मुक्तियां सायुज्य सारूप्य सालोक्य साष्टी तथा सामीप्य को पार कर जाती हैं। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा नल कुंवर को अपने तथाकथित साथ से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विता। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद। सर्वप्रथम मैं आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि व्यास आसन पे बैठने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई लायकात नहीं है, मुझ में ना कोई ऐसे गुण है कि मैं एक्चुअली प्रवचन दे सकूं। लेकिन इस्कॉन की एक बहुत ही अच्छी प्रथा है बरसों से कि वृक्ष जितना वृद्ध होता है, भले फल नहीं देता है, कुछ काम का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको काटते नहीं है, बचा के रखते हैं। जैसे राधा रास बिहारी मंदिर जिला प्रभुपाद जी बना रहे थे तो म्यूनसिपाल्टी ने आके बोला कि ये बीच वाला जो मंदिर के बीच वाला एक वृक्ष है और गोविंदा के सामने वाला वृक्ष, उसको काटना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया, कई कितनी बार शिष्यों को भेज के वो परमिशन करवाया कि हम इन वृक्षों को नहीं काटेंगे। अंत में वो लोग ने कंटाल के परमिशन दे दिया कि ठीक से वृक्षों को मत काटो। तो ये इस्कॉन की परंपरा रही है। तो मैं वो पढ़ के ऐसा ही सोचता हूँ कि मैं भी वो ऐसा वृक्ष हूँ जो फल तो कुछ देता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन इस्कॉन की एक कृपा और परंपरा है कि मुझे संभाल के रखे, काटते नहीं है, फेंक नहीं देते हैं। विशेष करके मैं यहाँ उपस्थित कुंडल कृष्ण प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। महाभागवत और भक्त शिरोमणि और ज्ञानी व्यक्ति जिनके सामने, जैसे वो PhD और मैं नर्सरी का विद्यार्थी बैठा हूँ उनके सामने तो ऐसे तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इनकी कृपा रहेगी और आप भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि शिला प्रभुपाद जी के वचनों पे आधार पे मैं ये कथा कहने का विद फिलोसॉफी, क्योंकि कथा सबको पता है, सब लोग जानते हैं, जितने भी इस्कॉन में बरसों से आते हैं सबको ये कथा पता है, लेकिन इसका जो फिलॉसफी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्ट्रांग है। समाव पिछले कितने भी प्रवचन मुझे जितने भी मिलते जा रहे हैं सब स्ट्रांग ही मिल रहे हैं, हाँ, जिसमें एकदम काट के ही बात करना पड़ता है तो लेते हैं इस कथा को। कथा जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज में अवतरित हुए हैं, वहां वो भगवान नहीं है, वहां वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के सेवक भी हैं, किसी के मित्र हैं, किसी की छाप पे वो नाचते हैं भगवान होते हुए, कहने के लिए भगवान। ब्रज में वो भगवान नहीं है, ब्रज में उन्हें कोई भगवान ना कहता है ना मानता है। आज भी अगर आप इस्कॉन मंदिर या अन्य कोई मंदिर ब्रज में जाएंगे, अगर आप गलती से बोल दिए कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, तो कोई ना कोई आके आपको डांटेगा, बोले ये श्याम सुंदर फिर भगवान क्यों बोले ऐसा तुरंत डांटते हैं ब्रजवासी। अगर उधर रहेगा कोई वरिष्ठ तो बोले ये भगवान क्यों बोले, वो भगवान थोड़ी है, ऐसा बोल देते हैं। या आप राधा दामोदर जाके बोलेंगे राधा दामोदर भगवान की जय, तो वहां गोस्वामी आपको डांट देंगे, अरे भगवान क्यों कहते हैं, ये भगवान थोड़ी है। क्योंकि ब्रजवासियों का ये भाव है कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे कोई ना कोई एक ऐसा एक संबंध जोड़ के ही वो बात करते हैं। भगवान और भक्त का संबंध उनको समझता नहीं है। तो यशोदा मैया ने भी इन्हें अपना पुत्र समझ के बांध दिया था। बोले ये भगवान थोड़ी है, इसको इसने मस्ती किया है, इसको बांधना पड़ेगा। अब उनको कौन रोक सकता है मैया को? बलराम जी ने प्रयत्न किया था, बलराम जी गए थे यशोदा मैया के पास जब दामोदर को बांध के रखा था, जाके बताया कि मैया तुम्हें मालूम है तुमने किसको बांधा है? ये व्यक्ति वो है जो आकाश में भी आता है, जमीन पे भी आता है, पाताल में भी जाता है। ये कभी मछली का रूप लेता है, हाँ कभी सुअर का रूप लेता है, कभी वामन देव बनता है, तुम इसको पहचानती नहीं हो। ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि तपस्वी साधु वैष्णव जितने भी ना, सभी लोग, सभी 33 करोड़ देवता सहित सब लोग इसके चरण में झुकते हैं। हाँ तुमने उस व्यक्ति को बांधा है, हाँ तुमको पता है इसके बारे में कुछ? यशोदा मैया ने एक छड़ी उठाई लकड़ी और उसके पीछे भागती है, बोली तू इधर से भागता है नहीं तो मैं तेरे को भी बांध के रख दूंगी करके। तो बलराम जी डर के भाग गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैया से हम लोग जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भाव है, वो प्रेम है, मैया ने बांध के रखा है। लेकिन कृष्ण कुछ अलग ही सोच रहे, बोले ये बांध के अगर मुझे रखा है, हाँ मैंने क्या किया, मैंने कोई गलती की क्या? भूख लगी थी तो खाना मांगा, दूध मांगा, तो एक तो दूध नहीं पिलाती है, ऊपर से मुझे छोड़ के, रोते हुए छोड़ के चली गई, तो मैंने सोचा मक्खन थोड़ा खाता हूं और जो भूखे हैं उसको पहले खिलाना चाहिए ना, मैं खुद खाऊं ये बात सही है, मैं भी भूखा हूं लेकिन भूखे को पहले खिलाना चाहिए, इसीलिए मैंने बंदरों को खिलाया। तो इसमें मैंने क्या गलती कर ली? बंदरों को खिलाया और मैंने खाया, तो गलती तो सारी इसकी और इसने ही मुझे बांधा है। अब इसको और थोड़ा मुझे सताना जरूरी है, इसको कुछ परेशान करना पड़ेगा। भगवान भी इसी तरह से लीला करते अपने भक्तों के साथ, और किसी से नहीं करेंगे इस प्रकार की लीला। तो भगवान सोचते कि मुझे इसको और परेशान करना है, तो देखा, ऐसा नजर डाला अपने जहां पे बांधा था ना उखल से, उस कोर्टयार्ड में, नंद बाबा के कोर्टयार्ड जो गार्डन रहता है उसमें नजर डाल के देखते हैं कि क्या मस्ती करूं। तो तुरंत याद आया, अरे ये जो सामने दो वृक्ष खड़े हैं, इन दोनों वृक्षों को आज मैं घिरा देता हूं, सबसे पहला मस्ती मुझे यही करना है, ये लोग ये देख के ही कुछ ये हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इन दोनों वृक्षों को मुझे गिराना है। तो भगवान सोचते हैं कि मैं एक कार्य करते हुए अनेक कार्य करता हूं, तो पहला कार्य इन लोगों को मुझे पनिशमेंट देनी है, कुछ सिखाना है, मस्ती करना है, तो इन वृक्षों को गिराता हूं। लेकिन साथ साथ में ये बेचारे बरसों से इधर खड़े हैं, देवताओं के दो पुत्र हैं नल कुंवर और मणिग्रीव, इन लोगों का उद्धार मुझे करना है। करीबन यहां पे बताया गया कि 100 साल से खड़े थे, और कौन से 100 साल? देवताओं के 100 साल, यानी अपना 6 महीना जब पूरा होता है तो देवता का 12 घंटे होते हैं दिन, वैसे ही जब रात्रि उनकी होती है तो अपने 6 महीने और बीत जाते हैं, यानी एक दिन 24 घंटे वाला उधर पूरा हुआ तो अपने यहां 1 साल बीत जाता है। तो एक 365 साल को 100 गुना, इतने सारे सालों के लिए वहां ये दोनों भाई देवताओं के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव वृक्ष बन के खड़े थे नारद मुनि के श्राप से और आशीर्वाद से भी। श्राप इसके लिए कि वृक्ष योनि में खड़ा रहना कहीं पे बरसों तक, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में पनिशमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल लोगों को जो कम कपड़े पहनने की आदत है, इन्हें ये नहीं पता है कि वृक्ष कभी कपड़े पहनते नहीं है। तो मनुष्य जैसे जैसे अपने कपड़े को कम करते जाता है, वैसे वैसे उसका रिजर्वेशन होते जाता है कि इसको इतने ज्यादा साल, इतने ज्यादा साल, इतने ज्यादा साल अगले जन्म में वृक्ष बन के खड़ा रहना है। भारत की धीरे 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 दुर्दशा होती जाती है कि लोग निवस्त्र बॉलीवुड स्टार्स अपने आप का गौरव महसूस करती है, अपने आप में गौरव महसूस करती है। यहां तक कि एक बॉलीवुड स्टार ने रिसेंटली बताया कि मुझे नवरत्न का अवार्ड देना चाहिए क्योंकि मैंने निर्वस्त्र अमेरिका में सो फोटो शूट किया है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता है कि ये अगले जन्म में वृक्ष बन के बिना कपड़े के कम से कम 25-30-50 हजार साल खड़े रहेंगे उधर। उनको फिर पता नहीं 1000 रत्न का अवार्ड देना पड़ेगा उस समय। नवरत्न का क्यों या पद्म भूषण क्यों, कोई बहुत बड़ा अवार्ड उनको मिलने वाला है। तो ये दोनों भाई को देखकर भगवान सोच रहे कि इनका उद्धार करना चाहिए। फिर भगवान सोच रहे वैसे उद्धार के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त नारद मुनि ने कहा है कि इनका उद्धार मैं करूं, इसलिए मैं करूंगा, अन्यथा मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि इन दोनों वृक्षों का उद्धार करें, लेकिन मेरे भक्त का वचन है इसीलिए मैं करूंगा। तो कथा ऐसी थी कि ये दोनों भाई जो कुबेर के पुत्र है नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों शिवजी के भक्त थे, भगवान के कृष्ण के भक्त नहीं थे। जब भी जीव कोई ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य चाहता है, तो उसे समाज और वेद ये प्रेरणा देता है कि शिव जी की भक्ति करो, शिव का दर्शन करो, शिव जी को प्रणाम करो और शिव जी से प्रार्थना करके तुम ऐश्वर्य मांग लो। आशुतोष है, वो बहुत ही आसानी से दे देंगे, और ये भी नहीं सोचेंगे कि आगे क्या ये इसका उपयोग या दुरुपयोग करेंगे। शिव जी दे देते हैं, जितना चाहिए उतना दे देते हैं। वो खुद झोपड़ी में रहते हैं, खुद कभी गोल्डन कोई कुछ कपड़ा नहीं पहनते हैं, ना कोई ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, लेकिन सामने वाले को जितना चाहिए उतना गोल्ड दे देते हैं। कहा जाता है वेदों से कि पृथ्वी पे जितना गोल्ड है वो एक्चुअली शिव जी के वीर्य से पृथ्वी में प्रकट हुआ है, वेद ये कहता है। तो इतना गोल्ड, इतना सुवर्ण है शिव जी के, सोचो जिसके एक वीर्य के कण से अगर करोड़ों तोला सोना अगर पृथ्वी पे है तो उनके पास कितना सोना हो सकता है। लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर भक्त आके कहेगा ना कि हे महाराज शिव जी हमको थोड़ा गोल्ड दे दीजिए, आजकल लोग रुपया कहते हैं, लेकिन पुराने समय में वेद के समय में रुपया यानी गोल्ड, हाँ सोने को गोल्ड कहते थे, रुपया कहते थे, तो बोले भाई गोल्ड सोना दे दीजिए, तो वो दे देते थे। तो ये दोनों भाई भी थे और शिव जी के भक्त थे, वो जानते थे कि कृष्ण की भक्ति में गरीबी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे कि कृष्ण चाहते ही नहीं कि उनके भक्तों को पैसा मिले, कृष्ण चाहते ही नहीं है कि उनके भक्तों को पैसा मिले। क्यों? इसी कथा से आगे पता चलेगा कि क्यों नहीं कृष्ण चाहते हैं। ये दोनों भाई को जब बहुत धन मिल गया, युवान थे, शक्तिशाली थे, सुंदर थे, देवताओं के पुत्र थे, कुबेर के, भगवान शिव जी की कृपा से अति धन मिला था, और उनके आशीर्वाद से उनको और एक वरदान था कि वो कैलाश पर्वत के गार्डन में यानी बगीचे में मंदाकिनी नदी के तट पर जितना विहार विलास करना है उतना कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयर बोलते हैं ना, दुर्लभ ऐश्वर्य है यहाँ कि भगवान शिव जी जहां विराजमान है वहां कैलाश, जहां पे इतना सुंदर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, हाँ जो गार्डन है वहां पे मंदाकिनी नदी बहती है, गंगा जहां उसका नाम मंदाकिनी है, वहां के गार्डन में जो जा सकता है बहुत सौभाग्यशाली होता है, वहां वो जा सकता है, ये दोनों भाई जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस ऐश्वर्य की वजह से इन दोनों भाइयों को बहुत ही घमंड आ चुका था, प्राउड। हाँ, धन का सबसे पहला दूषण है कि वो आपको गर्व देगा, और गर्व होने के बाद शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरा जो धन हमें जो बोलते हैं ना कि एक बुरा कर्म कुछ करवाता है तो क्या करवाता है, उसका जो दिलचस्पी है वो तीन चीजों में बढ़ जाता है, शराब, स्त्री और जुआ, वाइन, गैम्बलिंग एंड सेक्स लाइफ। हाँ, व्यक्ति का जैसे ही धन आता है ना तो उसका दिलचस्पी उसमें बढ़ जाता है तुरंत ही, शिला प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में कहते हैं। तो इन दोनों भाइयों का भी ऐसा शराब और स्त्री में रस बढ़ गया। गैम्बलिंग करने की उनको आवश्यकता इसलिए शायद नहीं पड़ी क्योंकि अधिक से अधिक धन था, उतना धन उस लोक में वहां पे किसी के पास था ही नहीं, तब गैम्बलिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जितना चाहिए उतना धन था। लोग गैम्बलिंग की ओर क्यों जाते जब उनको जितना उनके पास धन है वो उन्हें पर्याप्त नहीं लगता, तब वो गैम्बलिंग से प्रयत्न करते कि और थोड़ा ज्यादा लेके आऊं, लेकिन इनके पास था। तो दोनों भाई मदमस्त होकर शराब, जो स्वर्ग का शराब वारुणी पीकर, दोनों भाई मंदाकिनी गंगा नदी में स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र होके संग करते थे, और वो भी स्त्री कौन सी, अप्सराएं, और वो भी निर्वस्त्र और सब युवान। यहां पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा युवान स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र होकर दोनों भाई मंदाकिनी नदी में विहार और विलास करते थे। तो प्रश्न उठा कि गंगा नदी तो अति पवित्र है, गंगा नदी तो इतनी पवित्र है कि कोई पापी तापी भी व्यक्ति अगर गंगा नदी में प्रवेश करता है, स्नान करता है, तो उसका प्योरिफिकेशन होता है, उसका शुद्धिकरण होता है। हाँ, गंगा नदी में प्रवेश करने से शुद्धिकरण होता है, पाप खत्म होते हैं। तो यहां ये दोनों भाई गंगा नदी में ही प्योरिफिकेशन तो दूर की बात रही, अपने आप को और कलुषित करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? गंगा नदी में तो शुद्ध होना चाहिए ना, शुद्धिकरण होना चाहिए, उससे बदले ये अलग ही हो रहा है। शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया है किसी स्कंद में कि गंगा नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति का चेतना उस समय क्या है, उस पर आधारित है कि उसका शुद्धिकरण होगा कि वो और बिगड़ सकता है। वहां अपने पाप को खत्म करेगा या अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएगा, उसकी चेतना व्यक्ति की बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाना तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैं स्नान करके आया तो मैं अभी सारे पाप को धोकर आया हूं। नहीं, सारे पाप शायद यथारूप रहेंगे और कुछ अन्य अनेक इच्छाएं को प्राप्त करके आए प्रकृति के संग के कारण, क्योंकि एक छोटा सा गर्व आ गया कि मैं अपने आप को शुद्ध करके आया हूं, मैं थोड़ा बड़ा अच्छा सज्जन साधु कुछ व्यक्ति बन गया हूं, और उस गर्व से वो अनेक प्रकृति से दूसरे दुर्गुणों को प्राप्त करता है और अपनी इन भौतिक इच्छाओं को बढ़ा देता है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि गंगा नदी में स्नान करने के लिए अगर किसी को जाना है, गंगा हो चाहे यमुना, पहला कंडीशन प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों के संग में ही जाना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए ही जाना चाहिए। तट पर बैठकर भी भजन कीर्तन गंगा का जो महात्मा है वो समझ लेना चाहिए और उसके बाद प्रणाम करते हुए उसमें प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे मायापुर के भक्त हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में, जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं या लायक नहीं समझते थे और नहीं जाते थे। और कुछ लोग ऐसे भी भक्त थे जो दिन में नहीं जाते थे, केवल एकदम अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे जाते थे, जबकि कोई नहीं रहेगा तब वो बड़े नम्रता से प्रार्थना करते हुए जाकर स्नान करते थे। और उस समय अन्य अभक्त या पापी तापी लोग आके जो गंगा नदी को अपवित्र करने का काम करते थे, ऐसे लोगों के संग से बचा करते थे। तो ये दोनों भाई की यह स्थिति थी क्योंकि इनका कॉन्शियसनेस, चेतना उस समय भोग का था, विलास का था, इसीलिए उनको उस गंगा नदी का जो फल मिलना चाहिए स्नान करने का, वो फल नहीं मिल रहा था। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गंगा में स्नान करके आया तो मुझे फल मिल रहा है। गंगा का एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है कि वो पापियों का पाप छीन लेती है, लेकिन हाथी स्नान की तरह अगर हम बाहर आके वापस दोबारा पाप करते रहे तो उसका फल खत्म हो जाएगा, उधर ही सजा है। ये जानबूझ के प्रकृति में ऐसी व्यवस्था स्वयं भगवान ने की है। भक्त लोग ये चाहते हैं कि जो लोग भगवान और भक्त नारद मुनि जैसे लोग चाहते हैं कि जो लोग गर्व करते हैं, जो लोग अपने ऐश्वर्य से मदमस्त हैं, जो लोग प्रकृति के रजोगुण को प्राप्त करके शराब और नारी में दिलचस्पी लेते हैं, उन लोगों को ये सब सुविधा उसके संपर्क में आने के बाद भी नहीं मिलती है। जैसे एक बार याद है मुझे, गुड़ाकेश प्रभु जी ने यहां मंदिर प्रवचन में बहुत वर्षों पहले की बात है बताया था कि भगवान का संग भक्त लोग भी करते हैं और मच्छर लोग भी करते हैं, लेकिन मच्छर को कुछ नहीं होता है, हा? उसका कोई चेतना शुद्ध नहीं होती, वो कोई भक्त नहीं बनता है। लेकिन भक्त लोग जब आके भगवान का संग करते तो उसको, लेकिन फिजिकली देखा जाओ बाह्य दृष्टि से तो एक ही स्थिति है, वो भी भगवान का संग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो उनको क्यों वो मौका या वो सुविधा नहीं मिलती, हमें क्यों मिलती है? ये चेतना पे डिपेंडेंट है। इन दोनों भाइयों की चेतना उस समय शराब में और स्त्री में लगी हुई थी। शिवजी ने यह सब देखा है कि ये दोनों भाई ये करते हैं, लेकिन शिवजी अपने आप में एक इतने बड़े महान वैष्णव हैं, इतने बड़े देवता हैं कि वो हर परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने भक्त को न डांटना चाहते हैं न कुछ करना चाहते हैं, शायद यही कुछ कारण है कि संसार में ज्यादातर अधिकतम लोग शिव जी के मंदिर जाना चाहते हैं और शिव जी के भक्त बनना चाहते हैं कि भाई नहीं डांटेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, केवल सुविधा ही सुविधा मिलती रहेगी। और कृष्ण के वहां गए तो सुविधा तो धीरे धीरे बंद होती जाती है, हम सब लोगों ने अनुभव किया है। और फिर डांटना, पनिशमेंट देना, किसी को बड़ा कैंसर दे देंगे, किसी को क्या दे देंगे, कोई क्या हो जाएगा, किसी की पत्नी बीमार कर देंगे, वो बेचारा अच्छा खासा ब्रह्मचारी शादी करके देखता है तो पत्नी बीमार हो गई और जीवन भर उसमें चला जाता है। ऐसे बहुत सारे भक्तों के जीवन से हम देखते रहते हैं। ये शुद्धिकरण का प्रोसेस समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत ही ज्ञान चाहिए, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं किए। लेकिन एक बार फिर घटना क्या होती है कि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। नारद मुनि जब वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि अरे ये दोनों भाई नलकुवर मणिग्रीव, हाँ सबसे धनी व्यक्ति, कुबेर के पुत्र, इतने सुंदर, इतने ज्ञानी, ये लोग आज क्या कर रहे हैं? स्त्रियों के साथ संग, वो भी मंदाकिनी गंगा नदी में, जहां लोग एक्चुअली नम्रता से अपने पाप को धोकर भक्ति प्राप्त करने आते हैं, उस पवित्र स्थान में जाके ये कर रहे हैं। और क्या हुआ कि उस समय वहां जो अप्सराएं थी वो भी निर्वस्त्र थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नारद मुनि को देखा अपने वस्त्रों को ढक लिया, शर्मा भी गई, वस्त्रों को ढका और चली गई दूर। कम से कम इतना संस्कार था उन स्त्रियों में, अप्सराओं में, कि उन्होंने देखा कि अरे ये तो साधु है, साधु के सामने ये हम क्या कर रहे हैं। तुरंत ही अपने शरीर को वस्त्र से ढक कर साधु से दूर हो गई और लज्जित भाव में थी, एक दुखी भाव में थी, अरे अरे ये हमने क्या कर लिया, हम नारद मुनि आ गए यहां पे। लेकिन ये दोनों भाई जो मदिरा पिए हुए थे, मदमस्त थे, अहंकार में थे, निर्वस्त्र थे, रजोगुण के शिरोमणि, एकदम रजोगुण में डूबे हुए थे, वो लोग ने अपने वस्त्र को भी नहीं ढका और उसी अवस्था में दारू पिए हुए, हाँ प्रभुपाद जी लिखे कि आंखें उनकी गोल गोल हिल रही थी, एकदम मस्त कर रहे थे और नारद मुनि के सामने भी हंस रहे थे, हाँ हाँ हम देखो क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साधु का आगता स्वागता कर रहे हैं, बहुत बड़ा सज्जन दास है। बेकार परिस्थिति में थे दोनों, एकदम इतनी गई गुजरी परिस्थिति में थे कि अगर नारद मुनि कृपा ना करे ना तो आने वाले कोटि 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 सालों तक एक कहीं वृक्ष बनकर बैठे रहते थे। बहुत ही खतरनाक योनि होती है वृक्ष योनि, अनेक सारी योनियां खतरनाक है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, यू नो, मनुष्य के अलावा बाकी सारी योनियां बहुत ही दुखदायी है, यहां तक कि देवताओं की वो भी दुखदायी है, लेकिन वो थोड़ा समय पुण्य की वजह से वो दुख हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे चलकर वही योनि आपको बहुत दुख दे सकती है अगर भक्ति के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये दोनों भाई निर्वस्त्र अहंकार में, हाँ एक वृक्ष की जैसी चेतना है, वृक्ष को साधु आया या बॉलीवुड स्टार आया वो निर्वस्त्र ही रहेगा उसके सामने, वो कभी नहीं सोचेगा ये बॉलीवुड स्टार है, निर्वस्त्र रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये साधु आया, नहीं नहीं एक सज्जनता से अच्छे कपड़े पहनेंगे, ऐसा वृक्ष कभी नहीं सोचता है, उसकी उतनी चेतना ही नहीं है। ठीक इस तरह से इसका व्यवहार है, इनको जड़मती वृक्ष बनाना चाहिए। तो पहले क्रोध आ गया, अब क्रोध में आके श्राप दिया, जाओ तुम देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष बन के रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक सजा रहेगी, वस्त्र पहनते नहीं हो, कुछ अक्कल नहीं है, क्या करते, तुम्हारे लिए यही ठीक सजा रहेगी। लेकिन ये दोनों भाई ऐसी भी कोई स्थिति में नहीं थे कि जब ये सुने तो माफी मांगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कोई साधु अगर श्राप देता है तो सामने वाला तुरंत ही पछताता है, माफी मांगता है, लेकिन ये लोग इतने मदिरा का ये दोस्त, इतना उनको ये था, मदमस्त थे, इंटॉक्सिकेटेड, कि उनको ये भी नहीं पता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये श्राप दे रहे और अब हम माफी मांगे, नहीं मांग रहे कुछ नहीं वैसे ही। तब नारद मुनि सोचते कि ये इतने गए गुजरे कि इनका उद्धार हो ही नहीं सकता है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनका उद्धार संभव नहीं है, इनको सजा दी फिर भी ये लोग कुछ नहीं, ये कैसे पागल लोग हैं। तब नारद मुनि सोचते कि ठीक है आप लोग वृक्ष बनो, लेकिन वृंदावन में जाके बनो, जहां आगे चल के द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी ब्रजलीला आपके सामने करेंगे, वो लीला का दर्शन आप दोनों कर पाएंगे। तो प्रश्न होता है वृक्ष को कैसे दर्शन होगा, जब चेतना ही जड़ है, जब चेतना ही कुछ नहीं है, उसको अगर काटो तो भी दुखता नहीं है, ऐसा व्यक्ति सामने लीला देख के क्या चेतना प्राप्त करेगा, क्या उसका उद्धार हो सकता है या शुद्धिकरण हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि वृक्ष को काटो उसको दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो पागल है, वो उसकी चेतना जड़ है। जैसे कोई बहुत बड़ा, देखो जब सांसारिक कोई दुविधा और दुख के कारण जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, तो उसको चक्कू से काटो या कुछ उसको मारो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने संसार में देखा रहेगा कि पागल व्यक्ति को मारो या कुछ भी करो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी चेतना इतनी जड़ है, उसके कॉन्शियसनेस में वो साइंटिफिकली बोले ना तो वो ब्रेन में वो सिग्नल ही नहीं जा रहा है पेन का। अल्टीमेटली वो बॉडी से ब्रेन में सिग्नल तो जाना चाहिए ना, तब जाके उसको कुछ पेन होगा ना। माइंड और ब्रेन पे ही सब कुछ है, एक्चुअल फिजिकल बॉडी में कुछ भी नहीं है, ना पेन है ना प्लेजर है, ये तो जड़ है। लेकिन जब सिग्नल्स ब्रेन में जाता है और माइंड उसको फील करता है, उस सिग्नल्स को, प्लेजर हो या पेन हो, और अल्टीमेटली सोल है जो उसको रियलाइज करता है, उसका अनुभूति करता है, आत्मा ही अनुभूति करता है। सटल है माइंड और ब्रेन, जो इंटेलिजेंस कहते हैं वो भी तो सटल है, लेकिन सटल होने के कारण क्योंकि वो आत्मा के करीब का स्तर है, वो थोड़ा सेंस करते हैं जो कुछ भी है, लेकिन फिर अल्टीमेटली प्लेजर या पेन वो आत्मा को दे देते हैं। तो आत्मा भक्ति में है तो दिव्यानंद का अनुभव करता है, आत्मा अभक्ति में है तो भौतिक दुखों का ही अनुभव उसका चालू रहता है, ये अनुभव। तो इनको क्या किया जाए? तो नारद मुनि कहते मैं मेरी विशेष कृपा से इनको ये आशीर्वाद देता हूं दोनों भाइयों को कि वृक्ष योनि में रहेंगे तभी भी उनकी चेतना पहले के जैसी ही बनी रहेगी, यानी अभी जो चेतना है वैसी ही चेतना उनकी वृक्ष योनि में रहेगी, तब जाके उनको पता चलेगा ना कि ये भगवान है, इनकी ये लीला सुंदर चल रही है और हमने कुछ गलतियां की थी, इसकी वजह से आज हम वृक्ष बन के केवल बैठे हुए हैं, अन्यथा वृक्ष बना के क्या फायदा? अगर हम में से कोई वृक्ष बनेगा हमें कुछ नहीं लाभ होने वाला, हम तो एकदम दुखमय स्थिति में रहेंगे। हाँ, तो उनको नारद मुनि ने कहा मैं मेरी विशेष कृपा से इनको आशीर्वाद देता हूं, इनको वरदान देता हूं कि वृक्ष योनि में भी इनकी चेतना अभी जैसी है वैसी यथारूप रहेगी, तब वो समझ पाएंगे। अच्छा, आगे चल के अब समझ तो पाएंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि वृक्ष योनि में। तब नारद मुनि कहते हैं कि मैं मेरी विशेष कृपा से इन दोनों भाइयों को यह भी आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण उस समय जब लीला के लिए उनके सामने आएंगे तब इन दोनों भाइयों का उद्धार करेंगे, उनको भक्ति प्रदान करेंगे और वापस वो इस स्थान पे स्वर्ग में आ जाएंगे। अब ये प्रश्न हो सकता है स्वर्ग में क्यों, वैकुंठ में क्यों नहीं, हाँ गोलक वृंदावन में क्यों नहीं, जब भक्ति किए भगवान का दर्शन किए, हाँ भगवान का दर्शन कर रहे साक्षात, भगवान का स्पर्श हो रहा है अब तो उनका, है ना, जब वो गिराएंगे तो उखल का रस्सी का भगवान का स्पर्श हो रहा है, वो दोनों भाई अभी वृक्ष योनि से बाहर आएंगे, भगवान की प्रार्थना कर रहे देवता लोग, भगवान आशीर्वाद भी दे रहे हैं इसके लिए क्योंकि मेरे भक्त ने कहा था तुमको पहले जैसी भक्ति प्रदान होगी। तो प्रश्न होता है तो फिर वैकुंठ क्यों नहीं गए, हाँ गोलक वृंदावन क्यों नहीं गए, यहां वापस स्वर्ग में ही क्यों? हमारे आचार्य गण इसको बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक समझाते हैं, विशेष करके इस तात्पर्य में भी अगर आपने ध्यान दिया तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी समझा दिया इसी उत्तर को। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक शुद्ध भक्त और दूसरे कर्म ज्ञान योग मिश्र भक्त, दो कैटेगरी है। वैसे जितने भी जीवात्मा है उन जीवात्मा में भक्त होते हैं, अभक्त असुर होता है, लेकिन जो लोग भक्त है उसमें एक होते हैं शुद्ध भक्त और दूसरे होते हैं कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त या योग मिश्र भक्त। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल भगवान की सेवा पूजा कीर्तन आनंद उनके गौरव के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते, किसी भी प्रकार का भौतिक स्थूल या सूक्ष्म ऐश्वर्य वो नहीं चाहते, चाहे धन सुंदर पत्नी हा? या अच्छा घर कार, ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई, वो सूक्ष्म ऐश्वर्य भी नहीं चाहते कि मेरा कुछ नाम हो कि ये बहुत अच्छा कीर्तन करता है, ये बहुत अच्छा प्रवचन करता है, या ये बहुत अच्छा ब्रजराज सुत अष्टकम गाता, ऐसा कोई भी जब इच्छा नहीं होती है हृदय में। हाँ, ऐसा शुद्ध भक्त जो केवल कृष्ण का ही गुणगान चाहता है हर परिस्थिति में, ऐसा जो भक्त होता है वो भक्ति करके कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त करता है, भगवत धाम जाता है और भगवान की सेवा में रहता है। लेकिन ऐसे भक्त जो भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ भौतिक इच्छा है, ऐसे भक्त को शास्त्र कर्म मिश्र भक्त कहता है। भक्ति लेकिन साथ साथ में परसेंटेज डिवाइडेड है, कुछ भक्ति चाहिए कुछ भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, कर्म मिश्र। अरे भगवान हम आपकी भक्ति जरूर करेंगे, हमें बहुत दिलचस्पी है, लेकिन भगवान हमको धन तो चाहिए ही साथ में। हाँ, कृष्ण हमको कोई अनमैरिड है तो सोचता है कि कृष्ण एक सुंदर लड़की से मेरा विवाह तो जरूर करवा देना, कम से कम इतना जरूर कृपा करना। या माता जी रहेगी तो कहते कि अरे भगवान एक सुंदर आपके जैसा कोई आपका भक्त मुझे पति के रूप में मिले, यही मेरी इच्छा है। या जो गृहस्थ बन चुके ये सब पैसा भी प्राप्त कर लिया है, सुंदर पत्नी बच्चे सब है, तो वो सोचता है मेरा नाम हो जाए अब संसार में। हाँ, मुझे लोग सज्जन एक अच्छा साधु माने। हाँ, मेरा एक सब लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, मेरी बात माने। किसी का लड़की का विवाह है तो लोग मेरे पास आए, मुझे पूछे कि मेरे बच्चे के लिए कोई लड़की है कहीं पे। हाँ, हर प्रकार का मार्गदर्शन के लिए लोग मेरे पास आए, मैं काउंसलर बनूं। हाँ, ये जो इच्छाएं है ना सटल है, ये सूक्ष्म इच्छाएं, ऐसी इच्छा करने वाले व्यक्ति लोग जो होते हैं वो कर्म मिश्र भक्त होते हैं। और ये कर्म मिश्र भक्त का गंतव्य इस जन्म के बाद जो है वो देवलोक में है, देवताओं का है। और शुद्ध भक्त का इस जन्म के बाद का जो गंतव्य है वो वैकुंठ है। वैकुंठ में चाहे वो किसी भगवान के अवतार का जो ग्रह रहता है, जैसे नरसिंह लोक है, वामन लोक है, वहां कहीं जाए, या अयोध्या जाए श्री रामचंद्र जी के वहां, या द्वारका जाए द्वारकाधीश जी के वहां, या डायरेक्ट गोलक वृंदावन टॉप मोस्ट प्लैनेट में चले जाए जहां स्वयं कृष्ण ही अपने पूर्ण रूप में लीला संपन्न कर रहे हैं। तो ये देवता लोग जो थे नलकुवर और मणिग्रीव, ये एक्चुअली कर्म मिश्र भक्त थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअली भक्ति का ज्ञान पहले से ही था, लेकिन भौतिक लाभ की इच्छा से शिव जी के भक्त बने थे, और जब लाभ प्राप्त हुआ तो भोग कर रहे हैं, यानी कर्म मिश्र भक्त है। प्राय देवता लोग कर्म मिश्र भक्त है, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंटेलिजेंट मनुष्य देवताओं के मंदिरों में नहीं जाता। देवताओं के मंदिरों में आराधना पूजा सेवा और कुछ उनसे भौतिक लाभ मांगना, ये बुद्धिशाली व्यक्ति लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग बुद्धिशाली होते नहीं है, इसलिए हम लोग जाते भी है, मांगते भी है, क्या क्या हमको इच्छाएं रहती है। कभी गणपति आए तो गणपति के पास हम जाते हैं। अपनी स्थिति को हमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग क्या है करके, उस स्थिति के अनुसार अपना गर्व रखना चाहिए हर व्यक्ति को। शिला प्रभुपाद जी कहते थे जब भी गर्व आया तब सोचो तुम्हारी स्थिति क्या है। मालूम है एक बाल के टोच पे कितनावा हिस्सा है आप? 10,000वां, 10,000 ना? बाल का टोच का जो हिस्सा है उसको 10,000 टुकड़ों में किया जाए, अब सोचो एक्चुअली हम कर ही नहीं सकेंगे हमारे अपने बल से। तो 10,000वां टुकड़ा एकदम बाल का, वो भी टोच, पूरा बाल का बोला होता तो भी कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में आता था। बाल का जो टोच है एकदम टॉप, इसका 10,000वां टुकड़ा, ये हमारी स्थिति है। ये नलकुवर और मणिग्रीव की, नलकुवर और मणिग्रीव की स्थिति है, 10,000वां हिस्सा। हम लोगों की क्या परिस्थिति है? कुछ भी नहीं है। तो फिर हम कैसे गर्व कर सकते हैं? फिर कैसे हम प्रकृति के इस रजोगुण को प्राप्त करें? कैसे हम ये सब भोग विलास करें? हम कर ही नहीं सकते वास्तव में। लेकिन बुद्धि जब मदमस्त हो जाती है तो बुद्धि कहती है नहीं, तुम भी भोग कर सकते हो, करो। इसीलिए ये जो जन्माष्टमी उत्सव है ना, ये बहुत ही अच्छा एक्चुअली उत्सव है, जिसमें भगवान की जो लीलाएं संपन्न हुई है इसका वर्णन हो रहा है, और जीव को एक मौका मिल रहा है कि भगवान कौन है ये समझने का, भगवान कैसे कैसे कार्य संपन्न करते हैं। हाँ, इसका श्रवण करने का एक सुंदर मौका मिल रहा है। और प्राय इस्कॉन के अलावा ज्यादातर लोग इस जन्माष्टमी उत्सव को समझने का प्रयत्न परंपरा से न कर अन्य तथाकथित साधुओं से करते हैं, तो वहां भी वो फेल हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से या तथाकथित साधुओं की बुद्धि से न भगवान को कभी समझा जा सकता है, न भगवान की लीलाओं को समझा जा सकता है। यह केवल गुरु परंपरा की बुद्धि से ही समझा जा सकता है। गुरु परंपरा जो भगवान कृष्ण से जुड़ी थे, वो अपनी दिव्य बुद्धि से जब ये लीलाओं को समझाते हैं, जब ये कथाओं को समझाते, तभी केवल हम समझ सकते हैं, अन्यथा असंभव रहता है। इसका एक उदाहरण मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था नेट पे। एक व्यक्ति ने, एक जगह कोई एक क्लास चल रहा था, कोई तथाकथित साधु कृष्ण जन्माष्टमी का एक क्लास दे रहा था, और ये बता रहा था कि देखिए ये भगवान का अवतरण होने के पहले क्या क्या हुई, देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, वो लीला उसने बताई थोड़ी। वो बताने के बाद कहता है कि आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र जो है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस डर जाता है, अब कंस तलवार निकाल के देवकी को ही मारना चाहता है। ये सोचता है कि मैं देवकी को ही मार दूं तो फिर ना आगे कोई पुत्र होगा, ना कोई आगे ये घटना घटित होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने वसुदेव को बुद्धि देकर, हृदय से उनको हिम्मत और बुद्धि देकर उसको समझाया कंस को। वो भी वो तथाकथित साधु बता रहा है, ठीक भागवत की तरह बताया जा रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि पहला पुत्र होता है, लेकिन फिर नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि आठवां पुत्र मारेगा ये सोचकर तुम उन लोगों को बाहर छोड़े हो, इनको पकड़ के एक्चुअली जेल में रखना चाहिए तुमको, आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को पकड़ के एक ही जेल में डाल दिया दोनों को। तब एक भक्त उधर खड़ा होता है कि महात्मा मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो साधु तथाकथित थे, कोई बुद्धि तो अपना है नहीं, बस इधर से कुछ पढ़ा, परंपरा में दीक्षित नहीं रहते, परंपरा से ज्ञान को समझे नहीं है। इसलिए मैं बार बार हर प्रवचन में ये कहता हूं कि शास्त्र को पढ़ना, प्रवचन देना, समझना शिला प्रभुपाद जी के कथनों पर आधारित ही करो। शिला प्रभुपाद जी को छोड़कर हटकर मत करो, इम्पॉसिबल है शास्त्र को समझना। हम अपने जितने भी करोड़ों जीव है ना यहाँ पृथ्वी पे इस समय, जो परंपरा में नहीं, इन सभी करोड़ों जीवों को इकट्ठा करके भी सारे उस सभी लोगों की बुद्धि लगा देंगे ना, तो भी एक केवल एक कथा को भी हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये व्यक्ति का प्रश्न अब आपको बताएगा कि कैसे ये दोनों के बीच का वार्तालाप है ना, इन दोनों को नहीं समझा रहा है, दोनों की बुद्धि परंपरा से नहीं है जुड़ी हुई। वो साधु ने प्रश्न किया कि जब वो व्यक्ति ने प्रश्न किया साधु के, जब कंस को यह पता था कि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, जब उसने इन दोनों को पकड़ा तो एक ही जेल में क्यों डाला, अलग अलग जेल में क्यों नहीं डाला, कंस को इतना बुद्धि क्यों नहीं आया, एक ही जेल में डालता है, अलग अलग जेल में डालता, पुत्र ही नहीं होते, मृत्यु का होता नहीं, सारा जीवन ये दोनों सड़ते रहते जेल में और कंस अपना काम आगे चलाता था। ये प्रश्न भौतिक बुद्धि वाले लोगों को आ सकता है, जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है वो सोचेगा ऐसा क्यों किया, या पहले ही जब मारने वाला था तो मार क्यों नहीं दिया, वसुदेव की बात क्यों सुने। लोगों के पास उत्तर नहीं रहता है, लेकिन अपने आचार्य अच्छी तरह से समझाते हैं कि पहली बात तो भगवान ने वसुदेव को प्रेरित किया, हाँ, उसको इतना ज्ञान दिया और हिम्मत दिया कि जाओ इसको सामना करो और इसको समझाओ कि तुम्हारी मृत्यु से ज्यादा अपजस तब होगा कि जब तुम सशक्त व्यक्ति जिसका गौरव सारे संसार में है, वो एक अबला स्त्री, वो भी तुम्हारी खुद की बहन, और वो भी विवाह के दिन तुम उसको मारोगे। तो पहला तो उसको मृत्यु से ज्यादा अपजस है, वो मृत्यु से ज्यादा दुख है, वो उसको समझाएगा तुम मारोगे, तुम्हारा अपजस हो जाएगा, सब जगह संसार में सब लोग कहेंगे अरे ये दुर्बल व्यक्ति है, अबला स्त्री को मारा उसने, वो भी विवाह के दिन, वो भी अपनी ही बहन को, तुम्हारा कोई फिर जय जयकार नहीं करेगा कि ये शक्तिशाली है। वो जब उसको समझाया तो उसने अपने आप को रोक लिया था, अन्यथा वो नहीं रोकने वाला था। फिर रखा था उनको बाहर, फिर नारद मुनि ने एक्चुअली उनको बताया कि जाओ तुम उसको पकड़ के जेल में डालो, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा आपको कैसा पता चलेगा कि विष्णु आठवां बालक बन के जो आ रहे हैं वो क्रम से कब आठवां आएगा, वो तो पहला आके भी अपने आप को बाद में बोलेंगे मैं ही आठवां था, क्या भरोसा है इनका। हाँ, जैसे वो फूल की पंखड़ियों का उदाहरण बताते हैं कुछ लोग कि फूल की पंखड़ी जो राउंड में आठ रहेगी तो कौन सी पहली कौन सी आठवीं। तो नारद मुनि ने इस तरह से समझाया तो कंस को भय आ गया, भयभीत होके वो सोचा कि सही बात है, इनको जेल में डालो। तो तथाकथित लोग नारद मुनि को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि कितने साधु लोग कहते हैं कि नारद मुनि ने ऐसा काम चुगली लगाने का किया एक्चुअली, और खास करके ये बॉलीवुड वाले तो ऐसा सिनेमा ही बना डालते हैं कि नारद मुनि बोले तो चमचागिरी करते इधर से उधर इधर से उधर करके, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को। लेकिन इसके पीछे कितना सटल, इसके पीछे कितना दिव्य कारण रहते हैं जो केवल आचार्य गण ही हमें समझा सकते हैं। इस्कॉन में आने के पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यही सोचता था कि नारद मुनि चुगली का काम कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर, क्यों जाके कंस को इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं आचार्यों के प्रवचनों और सिद्धांतों पर आधारित परंपरा से कि नारद मुनि ये चाहते थे कि ये महादुष्ट पापी और थोड़ा पाप बहुत ही जल्दी कर दें ताकि इसका पाप का गड़ा भर जाए और फूट जाए, तो भगवान जल्दी से जल्दी आके इसको मार दें तो सारे पृथ्वी को शांति हो जाएगी, अधर्म का नाश होगा और फिर धर्म की स्थापना जल्दी से जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अगर धर्म का कार्य नहीं चलेगा संसार में सब लोग, तो जो अधर्मी है तो अधर्मी है, उनका तो नुकसान ऐसे ही चल जाए चलने दो, लेकिन जो लोग अधर्मी नहीं है वो डर के मारे भक्ति भजन नहीं कर रहे तो उन लोगों का नुकसान हो रहा है ना। जैसे आजकल चलता रहता है किसी भी सोसाइटी में कीर्तन करो तो ज्यादातर प्राय लोग कीर्तन का विरोध कर देते हैं, हाँ नहीं तुम रोज रोज कीर्तन नहीं कर सकते हो, हाँ अगर बड़ा स्पीकर लगा के अगर फिल्मी गाने रोज बजाओ तो कंट्रीब्यूशन भी देंगे, रोज महीने का 100 रुपया देना है तो दे देंगे, बोले लेके जाओ अच्छा बजाओ, कॉमन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन कीर्तन फ्री में हो रहा है, प्रसाद फ्री में मिल रहा है, तुरंत विरोध करेंगे कि भाई तुम रोज कीर्तन नहीं कर सकते हो, बंद करो। तो जो भजन कीर्तन करना चाहते हैं वो भी बेचारे डर के मारे बंद कर देते हैं, बोलते हैं नहीं 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 हमारे सोसाइटी में अलाउड नहीं, हम भजन कीर्तन का प्रोग्राम नहीं कर सकते, बेचारे करताल भी बजाएंगे तो स्लो बजाएंगे, मृदंग भी स्लो बजाएंगे, शिफ्टिंग कर डालेंगे, क्या क्या करते हैं, क्योंकि लोगों से डरना पड़ता है हमें, है ना। तो नारद मुनि ये चाहते थे कि कंस की डर की वजह से जो लोग सामान्य जन है भजन कीर्तन यज्ञ गाय की सेवा करना चाहते हैं वो भी लोग नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं। गाय की सेवा बंद थी कंस के समय में, यज्ञ करना बंद था, भजन कीर्तन करना बंद था। कंस को अगर कहीं पता चला वो पकड़ के मारेगा, जेल में डाल देगा। क्यों? वो चाहता था कि यज्ञ वगैरह से जो देवताओं को शक्ति मिलती है वो बंद करवा के देवताओं को अशक्तिमान करना है, और उसकी सोच वहां तक थी कि अगर 33.5 करोड़ देवता अगर अशक्तिमान हो जाएंगे तो उनका लीडर जो है कृष्ण विष्णु वो भी अशक्तिमान हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे थे। वो सोच रहे कि लीडर की शक्ति जो है वो उनके जो लोग हैं उनसे आ रही है, जैसे भौतिक स्तर में होता है, राजा की शक्ति उसकी सेना से है, उसके मिनिस्टर से है, उसकी प्रजा से है। मिलिट्री भी अगर कोई कंट्री की रहेगी तो मिलिट्री कमांडर की शक्ति अकेली नहीं है, उसके पीछे उसकी हजारों की सेना से है। तो भौतिक स्तर में ऐसा होता है, लेकिन दिव्य स्तर में उसको पता नहीं है कि कृष्ण ही इन सबको शक्ति देते हैं। भगवद गीता में खुला कृष्ण कहते हैं मनुष्यों का जो शक्ति है वो मैं हूं, अन्यथा मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है, भोजन पचाने की भी शक्ति नहीं है, भोजन बनाने की शक्ति नहीं है, भोजन खाने की शक्ति नहीं है, भोजन पचाने की भी शक्ति नहीं है, ये सब शक्ति भगवान कृष्ण की है। तो परंपरा पे आधारित यहाँ पे हमको आचार्यगण समझाते हैं कि कंस ने उनको क्यों नहीं मारा, और जब मारने की इच्छा हुई तो क्यों जेल में डाला, जेल में एक साथ में क्यों रखा। वो चाहता था कि वो एक्चुअली विष्णु बालक को देखना चाहता था कि आने दो उसको, और आने के बाद उसको मारूंगा, जब उसको आने के बाद मारूंगा तब ये देवता और डर जाएंगे कि अरे ये तो गया, हमारे लीडर को ही मार डाला, अब हम कैसा आवाज करेंगे कुछ। उसको उसको इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि देवता लोग बार बार ब्रह्मा के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये ब्रह्मा सहित सब लोग एक बार गए हैं विष्णु के पास, तट पर जाके प्रार्थना की है, हाँ उसको बोला है कि मुझे मारने के लिए आइए आइए करके, और इसलिए ये इनका प्लान चल रहा है आने का, इसको आने दो मैं मारूंगा। ये वो तथाकथित साधु उत्तर ही नहीं दे पाया, बोले इसका तो कोई उत्तर नहीं है। लेकिन परंपरा हमें समझाती है कि ये कंस चाहता था कि ये आए इसको मारा जाए, तब उसका जो सर्वोपरि राज है वो स्थापित हो जाएगा। नारद मुनि नलकुवर और मणिग्रीव को जो ये दिए उसी इच्छा को पूर्ण करते हुए, उनके वरदान की इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान दामोदर वहां उखल को बरोबर दो अर्जुना वृक्ष के बीच में लेकर तोड़ डाला, और तोड़ डाला तो वो दोनों भाई प्रकट होते हैं। भाई प्रकट होते हैं क्योंकि उनकी स्मृति बनी थी, वो जब देवता थे, जब भोग विलास किए थे वो स्मृति भी थी। अब इतने 365 × 100 करोड़ साल के लिए जो वो वृक्ष बन के रहे थे वो भी स्मृति थी, और उसके बाद अभी ये भगवान की कृपा से, नारद मुनि के आशीर्वाद से जो मुक्त हुए वो भी स्मृति बनी है। तो तुरंत ही हाथ जोड़ के स्मृति, और उस स्मृति में भगवान की स्तुति शुरू कर देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान पहले गाते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आगे चलकर हमारी मति भौतिक भोगों में न लगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा करिए। आगे ये हमारी जो भक्ति स्मृति जो अभी बनी हुई है, अभी जो है वो जीवन भर बनी रहे। इस्कॉन को भक्तों को चाहिए, इस्कॉन के भक्त इस प्रार्थना से ये सीखे कि हम सदैव भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें कि इस समय जो हम आपके सामने खड़े हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, आपके चरण कमलों में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपसे कुछ प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, वैसी ही स्मृति चेतना जीवन भर अगर हमारी बनी रहे तो भगवान आपका हम पर बहुत बड़ा कृपा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम मंदिर से अलग हो जाते हैं हमारी चेतना वापस भोग विलास में इधर उधर चली जाती है। लेकिन दुर्दैवम आजकल का युग जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कई लोगों की ये कंप्लेन है कि मंदिर में रहना भी तो मुश्किल हो चुका है, मंदिर में भी तो क्या क्या होते रहता है, मंदिर में भी हम देखते हैं कि जो हमारे हृदय में भोगों की इच्छा है उससे कई गुना ज्यादा इच्छाएं उनके हृदयों में है, और वो उससे कई गुना ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। यहां तक कि एक बरसों से इस्कॉन के दीक्षित भक्त ने मुझे बताया कि मैं उसको पूछा आप क्यों कभी दिखते नहीं है या आते नहीं है, प्रवचन में बैठते नहीं है, तो बोले क्या जाने का, बोलते कि वो लोग कहते हैं सब कुछ माया है, स्त्री माया है, पैसा माया है, इसे छोड़ दो, और बाद में मन में कहते हैं कि वो सब हमें दे दो, हम संभालेंगे उन दोनों को। ऐसे सब लोग बात करते बरसों से है, लोग इस कॉल में दीक्षित है ये सब, तो बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन हमें साथ में ये भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसे आम का एक पेटी लाओ तो कुछ आम खराब निकलते ही है ना, कुछ अच्छे निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, खराब को फेंक देते हैं, अच्छे को खाते हैं। कोई पूरा पेटी कभी फेंका आज तक किसी ने? अरे यहां तक कि 100 आम में अगर एक ही आम अच्छा रहता है तो उस एक आम को अच्छा खा लेता है और बाकी का जो है 99 उसको फेंक देता है। ऐसा ही करते हैं कि नहीं हम लोग, कि नहीं नहीं इसमें तो मैक्सिमम खराब है, पूरा पेटी फेंक दो जाके। अब बुद्धिशाली लोग तो आम खराब है तो अगर एक साइड का खराब है तो बाकी का अच्छा भी निकाल लेता है। ठीक उसी तरह जैसे हम काम के लिए बिजनेस के लिए जाते हैं तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे अस्पताल में हो, किधर भी हो, यहां पे 100 आदमी लोग काम करते हैं उसमें से 10 हमारे बॉस है, तो उसमें से 99% बॉस खराब ही रहते हैं और काम करने वाले भी कई कितने लोग खराब होते हैं, तो वहां जाना क्यों बंद नहीं करते हो, वहां जाना क्यों बंद नहीं करते हो? ये कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तो सब खराब ही लोग हैं। हम बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? यहां से कुछ भौतिक सुविधा प्राप्त करके आनंद लेना है, है ना, भौतिकवादी आदमी यही सोच के करता है। ठीक उसी तरह भक्त को यह सोचना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक स्वार्थ के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए हमको उस स्थान में जाना है। जैसे वो मंथ के एंड पे सैलरी प्राप्त करता है, मैं यहां हर दिन आरती कीर्तन करते हुए भगवान की कृपा टोकन रूप में स्लोली स्लोली प्राप्त करता रहूं, इसलिए मुझे मंदिर में जाना है। और 100 आम में अगर 50 खराब है जिसको हम फेंक देते हैं, जो अच्छे हैं उसको रखते हैं, ठीक उसी तरह हर सोसाइटी में, हर सेंटर में, हर मंदिर में कुछ ना कुछ अच्छे भक्त रहते ही है, कुछ ना कुछ अच्छे आम हमेशा रहते ही है, पूरा पेटी कभी खराब नहीं होता है। अभी तक कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा पेटी खराब आम निकला है? किसी का अनुभव कभी फेंके अपना 50 आम खराब है तो पूरा पेटी फेंके? किसी ने नहीं किया। इसलिए हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अच्छे आम है उसको ले लो। कुंडल कृष्ण प्रभु का संग मिला, अच्छा एकदम परफेक्ट राइपन फ्रूट बोलते हैं ना, जूस इज जूस, पकड़ लो इनको और ले लो, साधु बन जाओ इनके तरह। और जो खराब दिख रहे हैं, किस कोई ठिकाना नहीं है, हाँ क्या क्या करते रहते हैं इनका, तो जाने दो ना, हमें क्या लेना देना उन लोगों से, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी तो अभी अस्पताल है ये, यहाँ सब पागल लोग ही आते हैं अपना शुद्धिकरण के लिए, पागलपन भौतिक पागलपन दूर करवाने के लिए, तो कोई कम पागल है कोई बड़ा पागल है। शिल प्रभुपाद जी ये कहते थे इसके संबंध में कि इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, अपना व्यक्तित्व, अंग्रेजी शब्द परफेक्ट है इंडिविजुअलिटी, मुझे मालूम नहीं हिंदी में उसको कैसे बताया जाता है, व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व जो होता है ना, ये इतना इतना ही रेयर होता है, मीन्स अपना व्यक्तित्व जैसा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, भले करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब लोग अपना अपना इंडिविजुअलिटी एज इट इज मेंटेन करते हैं, कोई भी दो जीव समान कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। एक छोटा सा घटना हुई थी, एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास घड़ी नहीं थी और बीच पे मॉर्निंग वॉक करते करते प्रभुपाद जी ने बोला कितना बजा है, एक व्यक्ति ने अपना घड़ी देखा, एक भक्त ने बोला 7:30, दूसरा ने बोला 7:40, तीसरा ने वो सबको इच्छा रहती है ना प्रभुपाद जी की सेवा करे तुरंत आना, तीसरा बोलता है 7:45, एक बोला 8, शिला प्रभुपाद जी तुरंत बोले देखो छोटी सी छोटी बात में इंडिविजुअलिटी कितनी है, व्यक्तित्व देखो अपना अपना हरेक का, कितना छोटा सा बात है एक्चुअली, टाइम क्या हुआ इस समय, लेकिन हरेक का इंडिविजुअलिटी अलग है, हरेक का व्यक्तित्व अलग है, एक का हिसाब से 7:30 बजाए, एक का हिसाब से 7:40 हुई है, एक का हिसाब से 7:45 बजाए। हाँ तो ये अपना अपना व्यक्तित्व हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये रहेगा ही हर जगह में रहेगा, चाहे स्वर्गलोक में जाओ चाहे भौतिक दुनिया में जाओ चाहे मंदिरों में आओ, हर प्रकार के लोग हम लोग यहाँ पे है और हर एक प्रकार के लोग का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है कि मुझे शुद्ध होना है। अब कुछ लोग जल्दी हो पाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, लेकिन उन सब वाद विवाद और वो सब भूलकर छोड़कर बुद्धिशाली व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक स्वार्थ के लिए मंदिरों में आना चाहिए, सेवा जितनी हो सके करना चाहिए और भगवान का दर्शन कीर्तन करके अपना कल्याण करते रहने। पता नहीं कब कौन नारद मुनि आके हमारी इस नलकुवर मणिग्रीव जैसे भोग विलास स्थिति में साथ दंडित भी करेंगे और साथ साथ में आशीर्वाद भी देंगे कि जाओ आपको भगवान भी मिलेंगे आगे चलकर, ये हो सकता है। कौन महात्मा यहां भी इस संस्था में नारद मुनि जैसे महात्मा कुछ लोग हैं जो घूम फिर रहे, कभी ना कभी कोई दंडित करेगा और आशीर्वाद भी देगा, दंड शायद समझ में नहीं आएगा लेकिन आशीर्वाद जब फलित होगा तब तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उस अपेक्षा में भी हमको चलते रहना चाहिए, मंदिरों में आते रहना चाहिए, अगर नारद मुनि वहां न जाते तो शायद नलकुवर मणिग्रीव कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई साधु कभी नहीं आया तो शायद हम जन्मों जन्म तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का दर्शन आज ने तो कोई ना कोई जन्म में करना है, तो नारद मुनि जैसे भक्त महात्मा का संग का इच्छा कामना करते हुए मंदिरों के प्रोग्राम में आया कीजिए, आते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए प्रवचन, चाहे घर में अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो घर में प्रवचन सुनो कोई बात नहीं, साधु संघ ज्यादा महत्व का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ साधु लोग परेशान हो जाते हैं किसी से, तो उसको इम्पर्सनल संघ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इंटरनेट पे है सब सुविधा है, प्रवचन है कीर्तन है, टीवी सीरियल ऑन करने से कई गुना अच्छा रहेगा वो इम्पर्सनल, लेकिन उससे अच्छा रहेगा पर्सनल एसोसिएशन, नारद मुनि का जैसे पर्सनल संघ हुआ यहाँ पे। तो ये है इस कथा का संदेश कि हम भी नलकुंवर मणिग्रीव जैसी भोग विलास स्थिति में चेतना की दृष्टि से है, ऐश्वर्य की दृष्टि से नहीं है, हमारे पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, ना ही हम कैलाश जा सकते हैं, ना ही हमारे पास सुंदर स्त्रियां आने वाली है, ना ही इतना धन है, ना ही हम वो व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन चेतना हमारी नलकुंवर मणिग्रीव जैसी है सबकी, हमको भी वो सब चाहिए, सबको चाहिए, मिल नहीं रहा है वो अलग बात है। हाँ कभी कभी मैं मजाक में मिला नहीं इसलिए मृदंग लेके बैठा हुआ है मिल जाए तो अभी मृदंग फोड़ के निकल जाएगा, लेकिन साथ साथ में साधु का कृपा के लिए तो हम बैठ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, यह समझना चाहिए। इस चेतना को स्वच्छ करने का शुद्धिकरण का केवल एक ही उपाय है, हरि नाम और हरि साधु की कृपा, अन्यथा प्रकृति का ये जो रजोगुण है ये इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है किसी भी जीव को काम से कभी भी मुक्त नहीं कर सकता, असंभव है, हम मुक्त हो ही नहीं सकते अपने बलों पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जन्माष्टमी महामहोत्सव का हमारे लिए सबके लिए संदेश है कि हम अपने काम इच्छाओं से, भोग इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे अगर हम इन कथाओं का श्रवण साधु संघ के साथ करेंगे, और जो अच्छे आम है, जो अच्छे साधु है, उन लोगों के साथ में रहते हुए नारद मुनि की खोज में सदैव रहेंगे। एक न एक दिन हरेक के जीवन में नारद मुनि जैसा कोई महात्मा जरूर आएगा, शायद इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं शिला प्रभुपाद किसी ब्रह्मांड में इस्कॉन चलाते हैं और वहां जाके आप शिला प्रभुपाद जी के सानिध्य में सीधे सेवा में आ सकते हैं। ऐसे मैंने पिछले भागवतम में बताया था कैसे पृथुपुत्र महाराज सीधे सानिध्य में गए, शिला प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया मृत्यु के समय के आप आइए मेरे साथ आप चलिए करके, और वो भी मृत्यु के समय खड़े होकर कहते हैं शिला प्रभुपाद आप मुझे लेने के लिए आए। कहीं ना कहीं ये हो सकता है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पण, एनी कॉमेंट सजेशन? देवता कर्म मिश्र भक्त है ना, जो मैंने समझाया, तो मंदिर में नहीं जाने का अर्थ है मंदिर में नहीं जाता है भोग विलास ऐश्वर्य मांगने के लिए। अगर कोई ये सोचे कि मैं जाके उन वैष्णवों से आशीर्वाद दूं कि मैं अच्छी से अच्छी शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकूं, तो उसके लिए जा सकता है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन साथ साथ में बुद्धिशाली व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए कि जो खुद कर्म मिश्र है, जो खुद भोग विलास में भी चेतना रखते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे शुद्ध भक्ति कभी नहीं दे पाएगा, है ना। वो पहली बात तो वो ऐसा आशीर्वाद देने का हिम्मत खुद नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम देवता लोग प्रामाणिक तो होते ही है, वो लोग अपने आप को अंदर जानते हैं कि मैं खुद भोगी हूं तो मैं क्या इसको शुद्ध भक्त का आशीर्वाद दूं, वो ऐसा पाखंड नहीं करेंगे। हाँ, वो ऐसा जैसे ये प्रभु जी अच्छा ये उदाहरण याद दिलवा रहे, खटवांग महाराज, उन्होंने देवताओं को पूछा तो बोले क्या भैया हम तो तुमको कुछ आशीर्वाद नहीं दे सकते, हाँ ये कह सकते हैं भाई तुम कितना जियोगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुद्धिशाली हम यानी भगवत गीता और शास्त्र शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिशाली व्यक्ति को वहां जाने की जरूरत ही क्या है, सीधा इस्कॉन मंदिर में आइए, आशीर्वाद यहां से मिल ही रहा है, और नारद मुनि जैसे महात्मा इधर सदैव आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं तो वो दे ही रहे हैं ना। तो जो इधर मिल रहा है गाय का शुद्ध दूध, आप बोलते हैं मैं तबेले में जाके ढूंढने के लिए जाऊंगा और वहां कोशिश करता हूं गाय का दूध का, तो वहां भरोसा नहीं है, भैंस का मिलेगा, जर्सी गाय का मिलेगा, किसका मिलेगा, भरोसा नहीं है। जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, लेकिन मिश्र दूध ही मिलने की संभावना जहां पे है वहां तुम शुद्ध दूध ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, उससे अच्छा जहां शुद्ध दूध का गारंटी है वहीं सीधा जाओ और मिल गया और पी के शक्तिमान हो जाओ ना दिव्य भक्ति की दृष्टि से। कहने का तात्पर्य है, बाकी अगर चलते चलते कहीं गए, किसी मित्र के साथ जाना पड़ा, कभी परिवार वालों के साथ जाना पड़ा, कुछ ऐसा करना है तो वहां भी वांछाकल्पत्र व्यास करके प्रणाम करते हुए देवताओं से हम आशीर्वाद मांग लेते हैं कि हमको भगवान की भक्ति में दिलचस्पी तो है लेकिन हो नहीं पा रही है, तो आपकी तरफ से जितना कृपा हो सके आशीर्वाद कृपा कीजिए, धन देना है तो धन दीजिए, मैं एटलीस्ट मायापुर वृंदावन यात्रा तो करता रहा हूं हर दो महीने में एक बार, ऐसे धन मांग सकते हैं। ऐसा धन मांगना है तो मांग सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान में रखना वो धन देंगे तो बाद में वो ये देखने नहीं आएंगे कि तुम मायापुर गए कि माया में गए वो ये देखने नहीं आएंगे। जब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण पहले तो बात देते ही नहीं है जब तक इनको कंफर्म ना हो जाए कि ये मायापुर के अलावा कहीं नहीं जाएगा, जब तक कृष्ण को ये पक्का विश्वास ना आ जाए ना कि इसको धन मैं दूंगा और ये मायापुर ही जाएगा, ये पक्का विश्वास नहीं ना तब तक कृष्ण देते नहीं। प्रभुपाद जी इसी कथा के दो तात्पर्य पहले लिखे हैं, कृष्णा डजंट वांट टू गिव यू मनी बिकॉज यू विल बी इमीडिएटली एडिक्टेड टू वाइन एंड वुमन। ऐसे ही धन आता है, इमीडिएट एडिक्शन वाइन एंड वुमन, इमीडिएट है, हम सब उसी में आते हैं। इसीलिए कभी कभी सोचता हूं अच्छा हुआ भगवान ने मुझे धन नहीं दिया है, ठीक है चलो, क्योंकि जैसे ही धन आता हम पुरानी आदतों में आ सकते हैं। अरे एडिक्शन नहीं रहेगा तो भी नया, ये तो युग ऐसा है ना कि चारों ओर ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, अब तो घरों घरों में इंटरनेट पे, टीवी पे, बिल्डिंगों में, चारों ओर पोस्टर सब जगह यही सुविधा अवेलेबल है, तो जो बेचारा सीधा साधु रहेगा ना वो भी फंस जाएगा उसमें। तो ये कारण है, देवताओं के पास जाने में कोई दोष नहीं, लेकिन शुद्ध शुद्ध दूध नहीं मिलने वाला, गारंटेड है, तो फिर ट्राई करने का क्या मतलब है यार? जब नहीं मिलने वाला है, पक्का है, भैंस का मिला है, जर्सी का मिला है, किसको पता है? सीधा गाय का दूध शुद्ध दूध गारंटेड है, उसके पास गाय के अलावा कुछ है ही नहीं, वो कहां से भैंस लाएगा? तो फिर वहां ही ले लीजिए ना सीधा। और कोई क्वेश्चन? श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्री नारद मुनि की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।
प्रभु की।